Countrywide.
नमस्कार श्रोताओं, कंट्रीवाइड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल महाजन। राहुल जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
धन्यवाद मुझे बुला
जी। सबसे पहले राहुल जी, हम ये जानना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए कि ये नवीकरणीय ऊर्जा संज्ञा जो है, इससे क्या हम समझते हैं और हम क्या समझें, ये क्या चीज है?
देखिए, बहुत साफ है कि जो ऐसे फ्यूल्स हैं जो कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, या हमारी बिजली की रिक्वायरमेंट, या फिर हमारे वाहनों की रिक्वायरमेंट, या बाकी सब जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट हो,
जी जी,
जो कि धरती से हम निकाल तो लेते हैं, लेकिन वो बार बार को पैदा नहीं किया जा सकता। एक बार खत्म हो जाएंगे तो दोबारा नहीं आ सकते, उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं।
जी जी।
लेकिन ऐसी चीजों से जिससे हम बार बार एनर्जी जो है पैदा कर सकते हैं, पावर पैदा कर सकते हैं, जैसे कि विंड पावर है, सोलर पावर है, लहरों की, समुद्र की लहरों की पावर है, इस तरह से बहुत सारी न्यूक्लियर एनर्जी है
जी।
ये ऐसे जो है जो रिन्यूएबल है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा जिसे हम कहते हैं। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा को समझने का मेरे ख्याल से सबसे आसान तरीका है, जो चीजें बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि खत्म नहीं होंगी, उससे जो ऊर्जा हम पैदा कर सकते हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा।
जी जी जी। तो जैसा राहुल जी आपने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा जो कि हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार उसको पैदा कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, वेव एनर्जी की आपने बात की, तो अगर हम अभी करंट परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, जैसा कि वेस्ट एशियन क्राइसिस चल रहा है, जहां पर कि एलपीजी क्राइसिस हमने देखा, अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, बहुत क्राइसिस हमने देखा, तो ऐसे समय में नवीकरणीय ऊर्जा का इम्पोर्टेंस या महत्व उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। कितना महत्वपूर्ण है अगर हम इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, खास करके जब ये वेस्ट एशियन क्राइसिस चल रहा है? तो
देखिए, भारत जो है इस ओर काफी इसे कदम बढ़ा रहा है, और इसलिए भी बढ़ा रहा है क्योंकि हम जो जिस तरह से एनर्जी पैदा करते हैं, जिस तरह से हम अपने एनर्जी का उत्पादन करते हैं, उसको दोबारा देखने की जरूरत इसलिए भी है कि क्योंकि हम बहुत सारा पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल जिसे हम बोलते हैं वो इंपोर्ट करते हैं। वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए हमारा बहुत सारा पैसा लगता है। हम लगभग, अगर मैं आपको आइडिया दूं, तो 200 से 215 मिलियन टन क्रूड ऑयल हम एनुअली इंपोर्ट करते हैं
जी, जी।
और हम 120 से 170 बिलियन डॉलर ऑयल इंपोर्ट पे या क्रूड ऑयल इंपोर्ट पे। अब अगर हमें इसे बचाना है, हमें देश में आत्मनिर्भर होना है ऊर्जा के क्षेत्र में, तो इसके लिए जरूरी है कि हम उन चीजों का इस्तेमाल करें जिनके जरिए जो एक तो भारत में अवेलेबल है, जैसे कि हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं जो कि खत्म नहीं होंगी, और जिसके जरिए ये जो डिपेंडेंस है, ये जो निर्भरता है बाकी देशों पर, जहां जो अपनी निर्भरता कम कर सकेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा भारत की जनता के लिए, भारत के लिए बहुत।
जी जी जी। जैसा कि आपने कहा कि अगर हम कुछ चेंज कर सकें, खास करके अगर जो फॉसिल फ्यूल से हट करके ये नवीकरणीय ऊर्जा की ओर चलें, तो ये हमारे लिए उतना ही फायदेमंद होगा। तो राहुल जी, जैसा कि हम देख भी रहे हैं और केंद्र सरकार की ये मुहिम भी रही है कि जहां तक फॉसिल फ्यूल की बात है, गाड़ियों की बात है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पुश एक काफी बड़े स्तर पर हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, तो उस दिशा में जो पावर डायनेमिक्स है, यानी कि एनर्जी डायनेमिक्स है, वो किस तरह से बदलता हुआ आपको दिख रहा है?
एनर्जी डायनेमिक्स अगर आप बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें,
जी जी जी,
वो तो है ही, लेकिन आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी, उनको चार्ज करने के
जी।
तो कई क्षेत्रों में काम हो रहा है, इसी क्षेत्र में काम नहीं हो रहा। जैसे भारत ने जून 2025 में भारत ने जो 50% जो है गैर जीवाश्म एनर्जी ईंधन स्थापित क्षमता जो है वो हासिल, यानी हमने जो है नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए 50% ऊर्जा पैदा करने का तैयारी क्षमता जो है वो बना ली। तो ये कह सकते हैं भारत के लिए अचीवमेंट है। भारत विश्व के 3 शीर्ष ऐसे देशों में है जो सबसे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता रखता है, और इसमें अगर आप ये कहें कि पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, उसमें हमने 50% हासिल की है, ईंधन स्थापित क्षमता, इसमें 5 वर्ष पहले स्थापित, मतलब 2030 में हमने कहा था पेरिस एग्रीमेंट में कि
जी
2030 तक हम ये लक्ष्य प्राप्त करेंगे, लेकिन हमने 5 साल पहले ये लक्ष्य जो है
जी जी
वो प्राप्त किया है।
जी
अब अगर मैं इसको और संदर्भ दूं तो इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि जो हमारी स्थापित क्षमता है ऊर्जा पैदा करने, वो 485 या 485 गीगावाट है,
जी
और जो हम नवीकरणीय ऊर्जा जो पैदा करते हैं वो जो है वो 242 से 243 गीगावाट। तो एक बड़ा जो हिस्सा है ऊर्जा को पैदा करने का वो हम अब नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए करते हैं, और
जी
इसमें भी जो बड़ा पार्ट है वो सौर ऊर्जा का है। सौर ऊर्जा के जरिए अगर हम बात करें तो हम लगभग 150 गीगावाट जो है 2026 के अगर मैं आता तो 250 गीगावाट जो है हम पैदा करते हैं, और ये इतनी तेज से बढ़ा। इसका भी एक संदर्भ कि अगर 2014 की हम बात करें तो हम सौर ऊर्जा केवल 2.6 गीगावाट पैदा करते थे, और आज हम 150 गीगावाट पैदा। तो ये छलांग बहुत बड़ी है जिसको हमने पाया है, जिसको हमने हासिल किया है। इसी तरफ अगर हम देखें कि इसमें और भी चीजें हैं कि जो हम पानी के जरिए यानी डैम्स के जरिए जो ऊर्जा या एनर्जी हासिल करते हैं वो 49 गीगावाट है।
जी
परमाणु ऊर्जा तेजी से हम बढ़ा रहे हैं, वो 8.7 गीगावाट है। अब बात करते हैं हम व्हीकल्स की, आपने बात की, वो भी थोड़ा सा मैं आपको संदर्भ दे दूं। अब हमने धीरे धीरे जो है व्हीकल्स में जो पेट्रोल में ब्लेंडिंग है एथेनॉल की, यानी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की जो कोशिश है उसको पुश करना शुरू किया है। आपने भी हाल ही में देखा होगा कि सरकार जो है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके जरिए पहले जो हम E10 या E20, जो आप तो हाल में E20 की बात हम करें, E20 यानी 20% एथेनॉल जो है पेट्रोल में मिलाना, इस पे जब हम आ गए हैं उससे ज्यादा आगे E85 और E100 यानी 85% एथेनॉल जो है वो पेट्रोल में मिलाना, या पूरा का पूरा एथेनॉल
जी
100% उसके जरिए गाड़ियां चलाने की ओर हम जो है अग्रसर हो रहे हैं, और इसकी ओर सरकार ने कदम उठाया है। उन्होंने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है इसको लेकर, तो ये एक अच्छे कदम है। इसमें कई तरह की तकनीकी जो है वो जरूरतें हैं उसको सरकार पूरा कर रही है, और वो कोशिश ये होगी कि सारे जितने व्हीकल्स हैं आगे जाके बने वो 100% एथेनॉल पे या फिर 85% एथेनॉल के ब्लेंडिंग के जरिए चलाए जा सके।
राहुल जी, आपने बात की नवीकरणीय ऊर्जा में, आपने सौर ऊर्जा की बात की और भी अलग अलग जो स्रोत हैं उनकी बात की, लेकिन एक बिंदु है जहां पर हम बात करना चाहेंगे, वो है न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल इश्यू है जिसपे बहुत सारी बातें, गोष्ठियां, सम्मेलन बहुत हुई हैं, क्योंकि एक ऐसा एक संवेदनशील ये क्षेत्र है जिसमें कि बहुत फूंक फूंक कर कोई भी सरकार हो वो कदम रखती है। अगर हम भारत की बात करें तो हम अभी कहाँ पे स्थित हैं, कितनी संभावनाएं हैं, और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये न्यूक्लियर एनर्जी एक सेंटर स्टेज ले आने वाले समय में?
देखिए, मैंने अभी परमाणु ऊर्जा के बारे में आपको बताया कि
जी
8.7 गीगावाट जो है हम परमाणु संयंत्रों के जरिए ऊर्जा पैदा करते हैं, जो 8.1% हमारी ऊर्जा का ओवरऑल अगर हम देखें तो वो है। हमने बहुत सारी इसकी ओर भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको बढ़ा सकें, इसको आगे ले जा सकें। हम किस तरह से, हमने बहुत सारे समझौते किए हैं, अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें हमने कई सारे परिवर्तन किए ताकि जो न्यूक्लियर एनर्जी को लगाने वाले लोग हैं वो भारत में आकर इस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो उसकी चीजें स्टेब्लिश कर सकते हैं। हमने भारतीय कंपनियों को भी इस तरह से पुश किया है ताकि वो भी कोलैबोरेशन के जरिए भारत में जो है वो इस तरह के संयंत्र लगा सकें जिससे न्यूक्लियर एनर्जी पैदा की जा सके। तो ये कोशिश तो जारी है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के दो पहलू हैं। एक तो न्यूक्लियर एनर्जी ये है कि वो एक कम कहें कि जगह में ज्यादा एनर्जी जो है पैदा कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उसमें जो खतरे हैं वो भी
खतरे हैं,
सरकार
बिल्कुल
समझती है, और
बिल्कुल
शायद एक ब्लेंड करने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के बाकी सोर्स और
जी।
न्यूक्लियर एनर्जी इन सब में किस तरह से एक मिश्रण के तौर पर आगे बढ़ा जा सकता।
आपने खतरे की बात की राहुल जी, न्यूक्लियर एनर्जी का सवाल जहां तक है, तो क्या जो समझौते जो हुए हैं या जो बातचीत जो चलती है और जो निवेश की बात होती है, डेवलप करने की बात होती है, कि क्या इसमें निजी क्षेत्र के लोगों को भी अलाउ किया गया है या नहीं?
ये जो बात हो रही है कि हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं वो लगाएंगे, उस एरिया को आगे बढ़ाएंगे, हम जो है 700 मेगावाट रिएक्टर्स की ओर जाएंगे, बड़े रिएक्टर्स भी करेंगे, तो एक कोशिश ये जो की जा रही है इसमें बाकायदा जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वही जो ये हो सकता है कि भारतीय इंडस्ट्री बाहर इसमें आगे बढ़े, लेकिन अभी जो ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो फॉरेन इंडस्ट्रीज हैं, मतलब बाहर के देशों से बड़ी जो प्लेयर्स हैं, बाहर के देशों में जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो ये सब काम करते हैं, वो लोग भी इसमें आगे बढ़कर आएंगे और हमारे यहाँ पर जो है इस तरह की कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे। हमारे यहाँ जैसे हम इसमें और कदम आगे भी बढ़ा रहे हैं, जैसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स जो हमने प्लूटोनियम में हासिल किया है वो अपने आप में जो है एक बड़ी अचीवमेंट है। थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स जो इंडिया में है ये एक बड़ी अचीवमेंट है। तो हम इस न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में सरकार में ये पूरी तरह से सरकार जागरूक है इस ओर कि किस तरह से हमें एक ब्लेंड जरूर बनाना चाहिए ताकि बाकी सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी में किस तरह से मिलकर आगे बढ़े।
जी 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 राहुल जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इनके अलावा क्या कुछ और ऐसे भी स्रोत हो सकते हैं जिन्हें हम टैप कर सकते हैं और जिनकी जरूरत या जिनकी उपलब्धता के हिसाब से उन्हें हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं?
बायोगैस वगैरह ये और तरीके हैं, बायोगैस के जरिए भी एनर्जी जो हम पैदा करते हैं वो अपने आप में जो है एक तरीका है जो हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन देखिए, इन सबको कहते हुए हमें ना केवल इस ओर देखना पड़ेगा कि हम इस तरह की एनर्जी सोर्सेज बताएं, लेकिन हमें बाकी सब चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि जो हमारी ग्रिड है उसकी कैपेसिटी कितनी है, जो हमारे लॉसेज होते हैं ट्रांसमिशन में उसको कैसे कम किया जा सके, ये सारे एक ऐसे ग्रिड स्टेबिलिटी के इश्यूज हैं, जो डिमांड और सप्लाई मिसमैच के इश्यूज हैं, ये सारे ऐसे हैं। और स्टोरेज एक बड़ा इशू है, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी में चले भी जाते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा में चले भी जाते हैं, तो भी जो भारत है उसको 2030 तक लगभग 208 गीगावाट बैटरी स्टोरेज की कैपेसिटी बनानी।
जी जी,
तो देखिए हमारी कैपेसिटी जो है वो बहुत कम है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन अगर मैं कैपेसिटी बोलूं तो 35.8 गीगावाट की अंडर कंस्ट्रक्शन, तो हमें ये कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी ताकि अगर हम पूरा फायदा भी लेना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी तो भी इस तरह की चीजों को हमें संभालना, जैसे कि जो सप्लाई ट्रांसमिशन कंपनीज हैं जो बिजली सप्लाई करती हैं उनके पेमेंट डिलेज में या फिर वो कंपनियां किस हालत में, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। वो कंपनियां अगर बेहतर काम करेंगी तो हमारे लिए हर चीज में लॉसेस भी कम होंगे, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी तो हम सप्लाई भी एक तरह से कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आगे बढ़ के देखनी जरूरी है ताकि हम एरिया में आगे बढ़ सकें।
जी जी, हमारा अगला प्रश्न वही है राहुल जी की रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवकरणीय ऊर्जा जो है उसके इफेक्टिव डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या क्या चुनौतियां या बॉटलनेक्स हम देख रहे हैं जिन्हें दूर करके इन्हें और सही ढंग से प्रभावी बनाया जा सके?
जो हमारी ग्रिड स्टेबिलिटी है उसको हमें ठीक करना होगा, जो ग्रिड की रेडीनेस है चाहे वो सोलर एनर्जी के लिए हो या विंड एक्सपेंशन, जो विंड एनर्जी की एक्सपेंशन हम कर रहे हैं उसके लिए हो, उसे हमें बेहतर बनाना होगा। जो ट्रांसमिशन कॉस्ट जो बढ़ती है या फिर ट्रांसमिशन लॉसेस जो होते हैं उनको हमें ठीक करना हो। ये सारी चीजें ऐसी हैं, मैंने ऑलरेडी बैटरी कैपेसिटी की बात की, बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी की, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ध्यान देने लायक हैं। और दूसरा देखिए, जब हम ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो हमें सोचना होगा कि जो हम 2070 तक नेट जीरो पे जाना चाहते हैं या 2030 तक 500 गीगावाट पे जाना चाहते हैं, जो हमारे नॉन फॉसिल टारगेट है, फ्यूल्स के नॉन फॉसिल फ्यूल्स के जरिए जो एनर्जी का टारगेट है, ये अचीव करने के लिए इन सारी चीजों पर ध्यान देना ही होगा। ग्रिड की मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान देना होगा, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स करने होंगे। जैसे अगर बात करें कि आपने बहुत देखा होगा कि जिस तरह से कई इलाकों में आप जाते हैं, किस तरह से जो तारे हैं वो लटक रही होती हैं, किस तरह से मतलब लोग जो है कई बार चोरी भी कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हटाने की जरूरत है, जिनको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। और दूसरा, कोल की डिपेंडेंसी जो हमारी वो कोई बहुत कम हो गई है ऐसा भी नहीं, हमारा अभी भी जो कोल जो है 60-70% कोल पे डिपेंडेंस है हमारी एनर्जी, और हमारा जो इंस्टॉल कैपेसिटी कोल का है वो 226 गीगावाट का, और हम आगे और बढ़ रहे हैं, 100 गीगावाट का हम चाह रहे हैं कि अगले 7 साल में हम 100 गीगावाट इसमें और ऐड कर दें, और साथ में जो कोल डिमांड जो है वो अगर प्रोजेक्शन जो दिखा जाए उसका 2030 तक तो 17% वो और ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में आपको ये सोचना होगा कितनी तेजी से हमें बढ़ना है, कितनी तेजी से अपनी डिपेंडेंस कोल पे कम करनी है, कितना हमें अपनी कैपेसिटी जनरेशन करनी है, कितनी हमारे को सुधार करनी है चीजों में, सारी चीजें देखनी है।
जी 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 राहुल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
से बात करने के लिए बहुत बहुत।
इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
countrywide.